I was thinking during this week.
और इस सप्ताह में सोच रहा था.
When you are in a battle, is common knowledge that we can all get hurt.
और ये एक बहुत ही सामान्य ज्ञान की बात है, जब हम युद्ध में होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमको चोट न लगे.
But a good soldier, what he would do?
लेकिन एक अच्छा सैनिक जो है वो क्या करता है?
If it is that hurt is tolerable, he would not try to give his attention on the hurt. We'll focus on his goal of winning the battle.
लेकिन अच्छा सैनिक अगर वो चोट को सह सकता है तो चोट के ध्यान नहीं देगा, लेकिन वो युद्ध को जीतने की ओर ध्यान लगाएगा.
He'll think, I'll treat my wound when I go back after I win the battle. Now my focus is to win the battle.
वो अच्छा सैनिक सोचेगा, जब मैं वापस जाऊंगा तब मेरी चोट को ठीक करूंगा, लेकिन अब मेरा ध्यान जो है इस युद्ध को जीतना है.
Not nursing my own small little bruises and feel self-pity on himself.
और अभी ये मेरा ध्यान नहीं कि छोटी चोट जो है उसको मैं ध्यान दूं, उसके ऊपर मैं सहानुभूति करूं.
All this happened to me.
और ये सब मेरे साथ हुआ है.
So that's a good example. We all should be like a good soldier.
और हम एक अच्छा उदाहरण है, हम सबों को एक अच्छे सैनिक की तरह होना है.
And it's common that we can all get hurt due to many various reasons in this battle.
और ये ऐसा हो सकता है कि बहुत ऐसे युद्ध के समय जीवन के हर चीजों के अंदर हम बहुत सारी चीजों से चोट
पहुंचा सकता है. No one is exempt.
और उससे कोई भी छूट नहीं सकता है.
But let's be real good soldiers of Jesus Christ and focus our attention on the goal which is in front of us.
लेकिन हम यीशु मसीह के अच्छे सैनिक बनकर अपने ध्यान को, हमारे लक्ष्य को यीशु की ओर लगाए.
In the same way, we have very nice sportsmen in our midst.
और हमारे बीच में अच्छे स्पोर्ट्समैन भी है.
So what do? If there is a they fall down, there's an injury.
और जब वो गिर जाते हैं, अगर चोट लगती है, तब वो क्या करते हैं?
They don't chalo, I can't run, I can't. That's not that. They forget it. They battle, continue playing till the game is won.
और ये नहीं बोलते कि अब मैं खेल नहीं सकता. वो तुरंत ही खड़े होकर उस स्पोर्ट्स को, उस युद्ध में वो खड़े होकर आगे बढ़ते हैं.
Good sportsmen are like that.
और अच्छे जो खिलाड़ी जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं.
So that their goal is not, they are not distracted from the goal.
और उनके लक्ष्य से वो हटते नहीं है.
And small bruises look after later.
और छोटी चोट को बाद में देखते हैं.
That should be our spirit in Christian life as well.
और मसीह जीवन में भी हमारी आत्मा इसी प्रकार होनी चाहिए.
Devil is a master cheater. He will one of the master weapon he will use is to send discouragement on our way.
और शैतान जो है बहुत ही माहिर है निराशा देने के लिए.
Somehow discourages various reasons and he will seek to distract us from our focus.
और किसी ने किसी तरह के निराशा से हमें उस लक्ष्य की ओर से हमारे ध्यान को वो हटा देगा.
We will not yield to that pressure.
और उस दबाव की ओर हम उस दबाव के हम लोग अपने आप को दे देते हैं.
Or yield into discouragement and giving up the battle.
और उस निराशा में हम अपने आप को दे देते हैं और उस युद्ध में हम हार मान लेते हैं.
And generally that discouragement Satan will put two routes.
और ये जो निराशा है बहुत ही सामान्य रीति से दो रीति से या उसके जड़ से वो देता है.
One is by showing our own failures, our own how we have fallen. See how many are seeing your Christian. See how we that way focusing, turning our attention on ourselves, showing our own failure, our own whatever we are lacking, showing that. Focusing on that and devil will try to discourage us.
और पहली बात जो पहला चीज जो शैतान हमें निराश करने के लिए अपने खुद की असफलता, हम जहां गिरे हैं, जिस चीज को हम नहीं कर पा रहे, उन बातों की और अपने लक्ष्य को लगाने के द्वारा वो हमें निराश करता है.
We should not yield to that temptation of getting discouraged, seeing our own failures.
और खुद की असफलता की तरफ देखने वाले उस निराशा की ओर हमको अपने आप को नहीं देना है.
Because entire scripture and the word of God says that Jesus is always there to lift us up and encourage us and cheer us.
और सारे वचन जो हम देखते हैं, जो भी सारी चीजें यहाँ लिखी गई, वो हमेशा हमें प्रोत्साहन देने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए है.
See, another way devil try to discourage by showing attention on others.
और दूसरी बात जो निराशा हमारे जीवन में लाता है वो दूसरी की ओर देखने ध्यान लगाने के द्वारा.
Showing the failures of others, giving focus on others.
औरों की निष्फलताओं की असफलताओं की ओर ध्यान लगाने के द्वारा.
Can give focus on my wife, my children, brothers, sisters, the church, elders, everywhere we see only failures in others. So that can discourage us.
Aur bhai behan patni ya aur bhai behan kalisya ke andar unki asafaltaon ki dekhne ke dwara hamare jeevan mein nirasha lata hai.
Again, is devil has like a huge microscope to blow up the negatives of others and shows in front, and that can discourage us.
Aur shaitan ke paas aisa ek microscope jiske baad dwara auron ki nakaratmak baatein badi zor se aur bade taur pe hamare se hum par prakat karta hai.
We should learn to tell devil when get behind me devil.
Hame seekhna hai shaitan se kehne ki hey shaitan tu mere piche hat ja.
You can always find fault with, no, this brother did not telephone me, he did not visit my home when I was saying praise the Lord, he did not tell in private. We can, so many complaints we can tell about others and get discouraged.
Aur bahut sari shikayat auron ke prati hamare paas ho sakti hai, isne mera phone nahi uthaya, isne mere sath mila nahi, bahut sari cheeze ho sakti hai.
2 Timothy chapter 4,
dusra Timothy 4 adhyay
verse 7.
Sat vachan.
Paul is telling that I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith.
Main achhi kushti lad chuka hu, maine apni daud puri kar li hai, maine vishwas ki rakhwali ki hai.
Towards the end of his life he is able to say this. I tremendously encourage me, this is something which should encourage each one of us.
Aur ye apne jeevan ke ant bhag mein ye keh raha hai, ye bahut aisi cheez hai jo hame bahut hi protsahan deti hai.
So consistently with steadiness he fought that fight.
Aur nirantar aur sthirta ke sath usne yuddh ko, us kushti ko usne lada hai.
That is how God wants each one of us to be.
Aur parmeshwar yahi chahta hai hum sabo ko hum is tarah se bane.
And he's speaking about a good fight, not endlessly picking fight and argument quarrels with some others.
Aur ye yahan pe likha hai achhi kushti ladne ke liye, yahan pe kisi bhi karan ke bina jhagda karne ke liye nahi kehta hai.
I have fought the good fight.
Aur main apni achhi kushti lad chuka hu.
And he said, I have finished the course.
Maine apni daud puri kar li hai.
I was thinking about when I thought each one of us, God has kept a course.
Aur main ye sochta hu ki hum sabho ke liye Parmeshwar ne ek daud ko rakha hai.
If you know, we have seen in the school race, every children when they run a race, everyone has got a track or a course.
Aur jaise hum dekhte jab bacche us race mein, us daud mein bhag lete hain, un har ek ke bachon ke liye ek unke ek track diya jata hai.
In the same way, each one of us has a course. God has in sovereignty kept a course in front of us.
Aur usi prakar Parmeshwar apni samarth mein hum sabho ke liye ek aisa track, aise daud hamare liye bana ke rakha hai.
And each one is supposed to run that course.
Aur hum sabo ko usi daud mein, usi track mein us daudna hai.
I should not try to stray into Kiran's course.
Aur mujhe aur kisi ke us track mein ya daud mein nahi daudna hai.
Good to recognize our course.
Aur ye hamari us daud ko pehchanna bahut zaruri hai.
It's God in his sovereignty has allowed or kept for me.
Jahan Parmeshwar ne apni maha samarth ke andar mere liye rakha hai.
And it's a wonderful thing when if you can say, I have finished my course, I have finished running my track.
और ये बहुत ही अद्भुत बात है इस प्रकार कहना कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है.
So let God really help us to be focused on the course which God has kept for us.
और परमेश्वर हमारी मदद करे कि उस भाग, उस दौड़ के ऊपर ध्यान लगाने के लिए जो उसने हमारे लिए रखा है.
And be focused that I am running in the course which God has kept me. I am not looking at others' course, this brother, that brother. Course, but I am focused to finish my course.
और मेरा ध्यान जो है वो मेरी दौड़ और मेरे भाग के ऊपर है, और कोई भाई बहन की दौड़ या उनके भाग के ऊपर मेरा ध्यान नहीं है.
If we are too much focused on other, chances are we will miss our course.
अगर हमारा ध्यान और भाइयों बहनों की ओर होगा तो हमारा जो लक्ष्य, हमारा ध्यान हम चूक जाएंगे.
The true sportsman will never look at others' course. He will just see focus on his course.
जो अच्छा खिलाड़ी वो अपने ही दौड़ के ऊपर वो ध्यान लगाता है, किसी और के नहीं.
So that is very true in Christian life as well.
और ये मसीह जीवन में बहुत सच बात है.
एंड सो लेट अस नॉट मिस आवर कोर्स.
इसलिए हमारे जो दौड़ है उसे हम खो न जाए.
समटाइम यू नो समबडी टोल्ड मी दिस एक्सा विच रियली हेल्प्ड मी एंड आई ट्राइड दैट पर्सनली. इट्स लाइक दिस, फॉर 6 months डोंट थिंक अबाउट एनीवनस फॉल्ट, नॉट योर वाइफ, नॉट योर चिल्ड्रन, नॉट योर ब्रदर्स सिस्टर्स, जस्ट लुक एट योर ओन लाइफ, फोकस इन योर कोर्स.
और किसी भाई ने मुझे इस प्रकार मेरे जीवन में बताया था, व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत सहायता मिली कि 6 महीने तक खुद के ही जीवन को देखना है, किसी के भी गलती की तरफ नहीं देखना है.
एंड एट द एंड ऑफ 6 महीने यू टर्न बैक द प्रोग्रेस यू मेड इन योर लाइफ.
और 6 महीने के बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे आप कितने आगे बढ़े अपने जीवन में.
आई सीन दैट इट रियली वर्क्स, रियली ट्रू. व्हेन 6 some period out you just forget about everyone our boss or government or municipality or police wise children focus on you
aur ye,
focus on your track
aur ye bahut hi sach baat hai aur kuch mahino kuch dinon tak apne hi taraf apne hi daud ke upar hum dhyan de ya government ya boss ya aas paas ke log unko bhul jaye
don't seek to find the faults of others but focus on your course running your race
aur ki galti ko na dhoonde lekin apni daud ko daude
we are bound to make progress
aur hum aage badhne ke liye bulaye gaye
hain that indicates that very often we miss our track we miss making progress because our focus is not attention on our own calling our own track but focus is on others
aur ye dikhata hai ki kai bar hum auron ki or dhyan dete aur hamara lakshya hota hai isliye hum apni us daud ko chook jate hain
and Paul is also telling that I have kept the faith
aur Paulus isliye kehta hai ki maine us vishwas ko rakha hai
so in our battles in our trials
aur hamari parikshaon ke andar us yuddh ke andar
in our losses
hamare har ek nuksan ke andar
we should make sure that we have kept our faith
hame ye dhyan rakhna hai ki humne us vishwas ko banaye rakha
hai I remember a time when I was relatively young now I was too much of focused on my success my career etc when I work with real sincerity the best of my best and I will always when the year end comes I will expect a good reward or increment
aur mere jawani ke dino mein mujhe yaad hai ki main bahut hi kaam karta tha dhyan lagata tha promotion ke liye career mein aage badhne ke liye aur saal ke ant bhag mein mujhe yaad hai main bahut hi apeksha karta tha ki mujhe kuch pratifal milna chahiye
so I seen God is sometimes so nice to me so whatever I deserve I deserve sometimes some year I don't get it
aur kuch saal kuch main jo apeksha karta tha kuch saal mujhe nahi milta tha
and I used to be traumatized discouraged anybody could see on my face
aur main koi bhi mere jeevan mere chehre ke upar us nirasha ko dekh pata tha
so God wanted to teach me a lesson
aur parmeshwar mujhe kuch paath sikhana chahta tha
my joy should not be dependent on that
aur mera aanand us par nirdharit nahi hona chahiye
on the we God wants to set us free from such things
parmeshwar hame un baaton se azaad karna chahta hai
and God wants to set a whole goal on at a higher level
aur parmeshwar chahta hai ki hamara lakshya unchi baaton ki or laga rahe
a loss of an increment or anything should not take away our spiritual joy
aur kisi increment ka agar nuksan ho jata hai promotion ka loss ho jata hai to aatmik aanand usse hamara kam nahi hona chahiye
that should not make suddenly I become silent brother Abu is not speaking anything
aur usse aisa nahi ho ki bahut shant ho gaya abhi main koi baat nahi kar raha
someone can get something happened inside I lost something so we should be free from all those things gradually I'm not saying
aur
that
dheere dheere karke in sare baaton se hame azaad hona hai
so in all those it we should keep our faith our higher goal
aur in sari baaton ke andar hamara vishwas jo hai unche lakshya ki or lagaye rakhna hai
because godliness is profitable for the life that now is and also for the life that is to come
aur kyunki vachan mein likha hai ki ye jeevan ke aur aane wale jeevanon ke liye wo labhdayak hai
and Paul is telling in verse 8 in the future there is laid up for me a crown of righteousness which the Lord the righteous judge will award to me on that day and not only to me but also to all those who loved his appearance
aur bhavishya mein mere liye dharm ka wo mukut rakha hua hai jise prabhu jo dharmi aur nyayi hai mujhe us din dega aur mujhe hi nahi varun un sab ko bhi jo uske prakat hone ko priya jante hain
if we faithfully walk in our secret life before God the track which God has kept for us the course which God has for we can expect a good crown
aur agar hum hamare vyaktigat jeevan mein hamare gupt jeevan mein vishwas yogyata se parmeshwar ne jo hamare liye daud rakhi hai usme agar daudenge to hum parmeshwar se ek pratifal ki apeksha kar sakte hain
and he is saying it is not only for me it is for everyone
aur yahan likha hai mere liye nahi lekin har ek vyakti ke liye hai
who loved his appearing
aur jo uske prakat hone ko priya jante hain
so if you fairly faithfully walk fight this good fight and run this race and keep our faith all of us God has kept a reward
aur sach mein jab agar hum apni kushti ko ladenge us daud ko vishwas ko rakhenge to us mukut ko us pratifal ko hum payenge
we should not miss that
aur hame usko nahi khona hai
you know in the story Jesus just said about the talents the master told good and faithful servant
aur hum jante ho jaise wo swami ne wo talent jiske paas diye gaye the usko kaha ki bahut hi acche vishwas yogya sevak
so each one should be looking to hear that our interest should be I want to hear that voice one day when I see Jesus I want to hear that from his mouth that you did well in what was entrusted to you and you are a good and faithful servant.
aur hum sabo ki ichha yahi honi chahiye jab hum yeshu ke samne khade honge usse ye sunne ke liye ki tune bahut acha kiya hai aur bahut hi vishwasyogya aur acha tu sabit hua hai.
and from the same parable what comforts us is God is not expecting something like comparing me with Kiran for example.
aur parmeshwar usi udaharan se ek baat cheez sikhata hai ki parmeshwar nahi chahta ki main apne aap ko kisi aur bhai ke sath ya अपने बाजू वाले के साथ में उसको अपनी तुलना करूं.
If I am given only just one talent, he is only expecting me to make one more talent with that.
अगर उसने एक ही talent मुझे दिया है तो परमेश्वर ये चाहता है, अपेक्षा करता है कि और एक talent मैं उसके लिए लेकर आऊं.
Master is comparing or expecting to make the one who received 5 talents.
और ये नहीं अपेक्षा करता कि जिसके पास 5 talent उसके साथ में तुलना करूं.
Is not an encouraging thing.
ये क्या प्रोत्साहन देने वाला नहीं है.
Whatever is entrusted to corresponding to that like Jesus is expecting from us.
और जो कुछ मुझे दिया गया था उसके ही भावना के द्वारा उसी के उत्तर के अंदर परमेश्वर मेरी यीशु मेरी ओर देखता है.
To whom 5 is given, he would expect another 5.
जिसको 5 दिया गया उससे 5 और भी अपेक्षा किया जाएगा.
To whom 2 is given, he will expect another 2.
और जिसको 2 दिया गया उससे 2 की अपेक्षा की जाएगी.
And to one is given, he is expecting only 1, not more.
और जिसको 1 दिया गया उससे 1 की अपेक्षा है, ज्यादा नहीं.
So it is good to again a reminder to us what is entrusted to me, whether it's small or big, Jesus is expecting a corresponding response from us.
aur ye apne aap ko yaad dilana ki jo kuch chota ya bada mujhe diya gaya hai uske pratyuttar mein hame yeshu ko uttar dena hai.
in 2 timothy chapter 2 also,
dusre timothy 2 adhyay mein
verse 3
teen vachan,
suffer harshly with me as a good soldier of Jesus Christ.
मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा.
I remember when I finished my studies in the university, there was a practice of autobiography. You know, friends will write some best wishes. I remember one of my best friend wrote me this verse, suffer hardship as a good soldier of Jesus Christ.
aur jab mera university mein mera wahan pe abhyas jab pura ho gaya, mere mitra ne mere liye is vakya ko likha tha ki acche yodhe ke saman dukh utha yeshu ke liye.
when everybody wished in each pages best leg, get the best job, etc., best career, etc., this brother wished to me learn to suffer hardship as a good soldier of Jesus Christ.
jab sare mitron ne acche acche mere liye greetings ya acche wishes likhe, is bhai ne mujhe likha ki acche yodha ke saman dukh utha.
so initially even though I did not like it, I really understood the meaning of that is what a good friend will wish for me.
aur shuruaat ke samay mujhe samajh nahi aaya lekin ek acha mitra ye usse ye apeksha kar sakte hain.
encouraging and challenging to suffer hardship as a good soldier of Jesus Christ.
chunauti dene wala, protsahan dene wala ki yeshu ke acche yodha ke saman dukh utha.
our human nature is we love to be pampered.
और हमारा मानवीय स्वभाव है कि हमें प्रेम करना या हमें पसंद है, हमें प्रेम कोई करे.
nice brother, nice sister.
कोई हमें ऐसा कहे बहुत अच्छे भाई और बहन आप हैं.
we like to hear all those.
और ये सारी चीजें सुनना हम पसंद करते हैं.
we don't like to be challenged.
और हमें कोई चुनौती दिए पसंद नहीं करते.
we don't like to suffer hardship.
और दुख उठाना हमें पसंद नहीं है.
but in christian life we are challenged to suffer hardship as a good soldier.
लेकिन मसीह जीवन में यीशु के अच्छे योद्धा के समान हमें दुख उठाना है.
and paul also told that in verse 4, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him as a soldier.
और चार वचन, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता.
If you consider ourselves as a Christian, a disciple, as a soldier of Jesus Christ.
और अगर हम अपने आप को मसीह के शिष्य मानते हैं, उसके सैनिक की तरह हम मानते हैं और एक सच्चे मसीह मानते हैं.
So our focus, if we are distracted anywhere, in our earthly, if we are entangled in things and we lose our main focus.
और अगर हमारा संसार के कामों के अंदर कहीं मन फंस जाता है और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम खो बैठते हैं.
इमेजिन एज बैटल इन द बैटल फ्रंट द सोल्जर इज थिंकिंग वेदर आई हैव स्विच्ड ऑफ माय गियर्स, सिली थिंग्स एट होम, पर्सनल थिंग्स, सी फोकस इज देयर. He cannot be a good soldier.
और सोच के देखिए, अगर युद्ध के अंदर सैनिक सोचता है वहां जाके कि मेरा गैस बंद करना रह गया है, कुछ छोटी छोटी बातें सोचता है.
सो इट्स गुड टू आस्क आवरसेल्व्स, आर वी एंटैंगल्ड इन unnecessary, unhealthy, earthly things.
और हमें अपने आप को स्मरण दिलाना है कि क्या संसार की कोई जो बातें जरूरी नहीं है, जो अच्छी बातें नहीं, उसमें क्या हम अपने आप को फंसा रहे हैं.
So if you are a soldier to somebody, our master is has the responsibility to provide for us, we don't have to really worry.
और अगर हम किसी के लिए एक सैनिक है तो हमारा जो स्वामी है वो हमारी चिंता करता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं.
Our commander has already made provisions for that.
और हमारा कमांडर जो उसने सारा उपाय हमारे लिए कर दिया है.
That is guaranteed. Then only we are enlisted as a soldier.
ये हमारे लिए गारंटी, इसलिए उसने हमें वो सैनिक का भाग दिया है.
So we don't need to be really distracted, discouraged. We have our attention diverted to unnecessary things.
और जो बिन जरूरी जो चीजें हैं उनकी तरफ हमारा मन निराश नहीं करने होने देना है या हमारे मन को विचलित नहीं होना है.
And he is also a third example, Paul is telling about an athlete.
और यहाँ पे एक दौड़वीर के बारे में वचन 5 में लिखा है.
If anyone competes as an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules.
फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता.
So may God really encourage us to focus our attention on our calling.
और सच में परमेश्वर हमारी मदद करे कि हमारी बुलाहट की ओर हमारा लक्ष्य हम लगाए.
And we don't waste away the opportunity and time which God has given us, and at the end we regret about it.
और परमेश्वर ने जो मौका और समय दिया है उसको हम व्यर्थ न कराए और अंत में हम उसका खेद मनाए.
Leaving all that is behind, let us look forward.
और जो पीछे उसको सब पीछे छोड़कर हम आगे की ओर देखें.
Many things we God has given us his ability to forget things which are not necessary and focus on our calling.
Parmeshwar ne hame yogyata di hai ki jo baatein zaruri nahi unko bhul kar aage ki aur hum lakshya ki aur aage badhe.
We need not be dragged by the past successes or failures or whatever happened, but we can focus ahead.
और भूतकाल में जो भी हमारी सफलता या निराशा सफलता रहे उससे हम खींचे न चले जाए, हमारा लक्ष्य हम आगे की ओर रखे.
And that is what will make us to win the battle.
और इसी के द्वारा हम उस युद्ध को जीतेंगे.
We read a very beautiful passage in Hebrews chapter 12.
इब्रानियों 12 में हम पढ़ते हैं.
Hebrews 12 verse 1.
वचन 1.
Therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every encumbrance and the sin which easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us.
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े.
So here this writer of the epistle is encouraging and reminding, we all have brothers, we all have a race to run.
और यहाँ पर ये लिखने वाला हमको प्रोत्साहित कर रहा है कि हमारे पास इससे भाई बहनों का गवाह है ताकि इस दौड़ में हम दौड़े.
Don't forget we are in a race.
हमें भूलना नहीं कि हम उस दौड़ में हैं.
It's not time to rust and it's not time to focus on our little bruises.
और ये सोने का समय नहीं है या हमारे चोट की थोड़ी जो छोटी चोट है उस पर ध्यान देने का समय नहीं है.
Now focus our attention on our race.
लेकिन अब हमारा जो लक्ष्य ध्यान जो है उस दौड़ की ओर लगाना है.
And run the race with endurance, with endurance.
और हमें उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ना है.
And two things he is saying there.
और दो चीजें वो कहता है.
One is the set aside the encumbrance.
और रोकने वाली वस्तु.
Now, things like distractors, for example.
और कोई चीजें जो हमारे ध्यान को भंग करता है.
We had a wonderful youth meeting Friday.
और शुक्रवार को एक अच्छी youth meeting यहाँ पर हुई.
Discussing and presenting things that distract them.
और ऐसी चीजों को वो प्रेजेंट कर रहे थे जो उनके ध्यान को भंग या दूसरी ओर लेकर जाता है.
Most all of them are applicable to everyone, not only for youth.
और केवल जवानों के लिए नहीं, लेकिन ऐसा ये सीखना तो हर एक के लिए लागू होता है.
And many things are not sinful things.
बहुत सारी चीजें पापमय चीजें नहीं है.
Lawful things.
उचित है वो.
Like using the computer, internet and WhatsApp etc.
और कंप्यूटर में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं.
But this can be an entanglement, an encumbrance.
और ये सारी चीजें शायद रोकने वाली चीजें हमको हमारे लिए हो सकती है.
Even though these are not sinful in itself, it distracts, it entangles us.
और ये पापमय चीजें नहीं होंगी, लेकिन हमारे ध्यान को भंग करके हमको हमारे लिए रोकने वाली वस्तु बन सकती है.
And it hinders my progress.
और ये मेरी बढ़ोतरी को रोकता है.
So here Paul is telling, that set aside the encumbrance
aur usne kaha ki har ek rokne wali vastu ko dur kare
set aside the hindrances
aur har ek rokne wali se thokron ko hum dur kare
and he is also saying and similarly the set aside the besetting sins
aur dusri cheez jo dur karna hai uljhane wale papon ko
our besetting sins can be like heavy weight tied on our leg
aur uljhane wale paap jo bahut ek bada vajan jo hamare pair mein agar bandh diya ho
if a weight is tied on and we are trying to run what progress we can make
aur एक वजन की चीज अगर पैर में बांध दिया तो हम दौड़ नहीं पाएंगे और हम क्या बढ़ोतरी कर पाएंगे
so we have to deal with the besetting sins with all seriousness
और बहुत ही गंभीरता के साथ उलझाने वाले पापों से हमें ये करना है
we should cut off them and liberate us and then only we can run
और उलझाने वाले पापों को हमको पूरी तरह से तोड़कर उसको दूर करना है और फिर भागना है
अदरवाइज इफ यू नर्स इट यू नो यू विल लाइक इट यू विल ड्रैग विद दोस
अगर हम उसको पसंद करेंगे तो उसको ही हम खींचते हुए चलेंगे
एंड वी विल नॉट मेक ए प्रोग्रेस
और उससे हम आगे बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे
एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग गॉड हैज गिवन अस ऑल प्रोविजंस टू मेक प्रोग्रेस इन दिस रेस
और मैं सोच रहा था कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारे प्रयोजन को किया है ताकि इस दौड़ में हम आगे बढ़ सके
थिंक अबाउट समवन साइक्लिंग
और सोच के देखे अगर कोई साइकिल चला रहा है
there is a little told, we saw all depending on our own strength.
उसको लगता है कि वो अपने खुद के सामर्थ्य के ऊपर वो चल रहा है
we can, with our own strength, we can try to be a good person, a better person.
और अपने खुद के कुछ अपने खुद के सामर्थ्य एक हद तक हम अच्छे मनुष्य बन सकते हैं
there are even people who don't believe in any god very you know maybe much better than some of us
aur aise bhi log hain jo kisi bhi parmeshwar mein wo vishwas nahi karte lekin hum kisi se wo badhkar hai acche log hain
with self effort we can make some progress
aur hamare khud ke prayatno se kuch thodi si badhoti hum kar sakte hain
no if you run, ride a cycle is better than walking
aur agar hum cycle khud ke chalate hain to wo chalne se to acha hi
but,
hai
but for us God has given his power holy spirit
lekin hamare liye parmeshwar ne uski samarth pavitra atma humko diya hai
it is like riding a bike
aur wo ek bike ko chalane ke jaisa
hai power is not by pedal
aur pedal se wahan pe taakat nahi aa rahi
hai there is an engine which gives power
lekin wahan par ek engine hai jisse taakat aur wahan mil raha hai
we only need our goal clear where we need to go
aur hame hamara lakshya saaf rakhna hai ki kahan humko jana hai
it's good to keep that god has given us a provision for a godly life
aur parmeshwar ne ek bhakti ishwariya jeevan jeene ke liye upay hamare liye kiya hai
it is not with our own strength
ye hamare taakat ya bal se nahi hai
and in verse 2 of Hebrews 12 we read fixing our eyes on Jesus the author and finisher of our faith who for the joy set before him endured the cross despising shame and has sat down at the right hand on the throne of God
aur vishwas ke karta aur siddh karne wale yeshu ki or taakte rahe jisne us aanand ke liye jo uske aage dhara tha lajja ki kuch chinta na karke क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस आवर फिक्सिंग आवर आईज ऑन जीसस
और ये बहुत ही महत्व की बात है कि हमारी आंखों को हम यीशु की ओर लगाएं
एंड इट्स एन एनकरेज टू रिमेंबर अगेन एंड अगेन ही इज द ऑथर ही इज द फिनिशर ऑफ माय फेथ
और बारंबार अपने आप को हम स्मरण दिलाए कि वही हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है
एंड इट इज आल्सो हिज बाय हिज ओन एग्जांपल ही इज सेइंग दैट ही एंड्योर्ड द क्रॉस डिस्पाइसिंग शेम
और वो अपने उदाहरण से कह रहा है कि लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा
फॉर द जॉय इज दैट वाज सेट बिफोर हिम
उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा हुआ था
दैट वी कैन रिप्लिकेट इन आवर ओन लाइफ
और वही हमारे जीवन में हम लागू कर सकते हैं
फॉर द जॉय इज दैट इज केप्ट बिफोर अस
और जो आनंद हमारे सामने रखा है
वी कैन आल्सो एंड्योर द क्रॉस
और उसके कारण उस आनंद के कारण हम इस दुख को इस क्रूस को उठाए
एंड डिस्पाइस इन द शेम
और सारी लज्जा को हम अलग दूर करें
and that is a way Jesus given for us
aur yahi ek rasta hamare liye diya gaya hai
and that is why we are encouraged to say that focus our attention on Jesus
aur isi prakar hum keh sakte hain hum yeshu ki aur hamare lakshya ko lagaye rakhe
and he is concluding that theme in verse 3 consider him who has endured such hostility by sinners against himself that he will not grow weary and lose heart
aur vachan 3 isliye us par dhyan karo jisne apne virodh mein papiyon ka itna virodh seh liya ki tum nirash hokar sahas na chhod do
so when you are looking at Jesus we will not be discouraged
aur jab hum yeshu ki or dekhenge hum nirash nahi honge
what does it mean
uska matlab kya hai
it doesn't mean that I have no problem
iska matlab ye nahi ki mere jeevan mein koi samasya nahi hogi
Jesus himself said in this world he had tribulations but I have overcome the world.
यीशु ने खुद कहा कि संसार में तुम्हें कठिनाई तकलीफ होंगे लेकिन धाड़स बांधो मैंने संसार को जीता है
We have tribulations, we have troubles, we have losses, we have sicknesses, but we become overcomers through all those.
Is sansar ke andar bahut hi takleefe hain, bimariyan hain, nuksan hain, lekin yeshu ne kaha yeshu ke dwara hum jaivant bante hain.
We are not disheartened by any of those.
Aur is kisi ke bhi dwara hum nirash nahi hote hain.
Any of us not going to dampen our zeal to finish the course which God has.
Aur ye sari cheeze hamari jo daud hai hame daud ko puri karne se kisi bhi tarah rok nahi sakta.
Because after all the earthly things are all temporary.
Kyunki ye jo sansar ki baatein jo hai bahut hi temporary hai.
The reward or crown which or righteousness which Paul is talking about is something eternal.
Paulus jo pratifal ke bare mein wo jo baat kar raha hai wo anant kal ka hai.
Something in eternity.
Wo anant kal tak rahega.
In this earthly life it is all just a beginning.
और ये संसार में तो केवल वो शुरुआत है.
और मिलियंस एंड मिलियंस और अनइमेजिनेबल टाइमलेस पीरियड वी स्पेंड विद जीसस.
और वो करोड़ों समय साल जो समय हम यीशु के साथ वो हम बिताएंगे.
माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेट अस रिसीव ग्रेस दो दैट वी डोंट लूज आवर फोकस.
हम प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर यीशु मसीह से अनुग्रह पाए ताकि उस लक्ष्य से हम खो न बैठे.
And let us not be discouraged by seeing either our own failures or the faults of others.
Aur hamari khud ki asafalta ya auron ki galtiyan dekhkar hum nirash na ho.
It will be a tremendous loss for us depending on the looking at the faults of others. We ourselves don't go to side and say we choose to leave our track.
और कहीं ऐसा ना हो कि औरों की गलतियां देखते हुए हम अपने ही ट्रैक से बाहर निकल जाए.
Unfortunately, many people do that.
और बहुत बार ऐसा लोग करते हैं.
We can easily put our blame on others.
हम बहुत ही आसानी से किसी के ऊपर दोष लगाते हैं.
Ultimately, we are losing the crown.
लेकिन उसका परिणाम क्या है कि हम उस क्राउन उस प्रतिफल को खो बैठते हैं.
Each one of us should be encouraged to be to run this race with endurance.
लेकिन हम में से हर एक को धीरज के साथ उस दौड़ को पूरी करना है.
A second thought our coming to my heart is that we also should encourage or cheer others in the race along with us.
और दूसरा विचार जो मेरे मन में आ रहा था कि इस दौड़ के अंदर में औरों को भी प्रोत्साहित करना है.
By God's grace we have so many our own family, wife, children, brothers and sisters, we are all running the race together.
और हमारे साथ हमारे भाई बहन पत्नी बच्चे हमारे साथ उस दौड़ को दौड़ रहे हैं.
And our life should be also an encouragement for others.
और हमारा जीवन औरों के लिए भी प्रोत्साहन का कारण हो.
In another way we can say we also should be cheering others, encouraging others.
और दूसरे शब्दों में हम औरों के लिए प्रोत्साहन देने वाले ठहरे.
By our life,
हमारे जीवन के द्वारा,
and by our words and attitudes,
aur hamare swabhav ke dwara, hamare shabdon ke dwara,
we can cheer and encourage others.
Hum auron ko protsahit kar sakte
hain. People around us need,
aur hamare aas paas ke logon ko uski zarurat hai.
Even the worldly people understand there is a need for cheering those who are running the race.
Sansar ke log bhi is baat ko samajhte hain ki unko protsahan ki zarurat hai.
So one verse I want to read,
ek vachan padhna chahunga,
in Galatians,
Galatiyo
chapter 6
6 adhyay
9 and 10 Galatians 6 9 and 10 let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not weary if we do not grow weary. So then, while we have opportunity, let us do good to all people, and especially to those who are in the household of faith.
गलातियों 6:9-10, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे. इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ.
So you should not be disheartened or become weary in doing good to others as well.
और हमें भलाई करने में कभी भी पीछे नहीं हटना है.
You should not think that at no point how long I should encourage this person, how long I should cheer him. That should not be. We should continuously do without any limit.
और हमें नहीं सोचना है कि कितना अधिक मैं इस भाई के साथ भलाई करूं, कितना अधिक मैं इसके साथ अच्छा रहूं, लेकिन बहुत ही अनंत रीति से. ये वचन जैसे कहता है,
while we have opportunity,
और जब तक हमारे पास वो मौका है,
use every opportunity,
और उस हर एक मौके का इस्तेमाल करें,
let us do good to all people,
हर एक के साथ भलाई करें,
especially to those who are in the household of faith,
और विशेष करके जो विश्वास के घर में हमारे पाए जाते हैं.
In Hebrews chapter 10:25 also we read,
इब्रानियों 10:25 में हम पढ़ते हैं,
10:24.
10:24.
Let us consider how to stimulate one another in love and good deeds.
और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें.
In other words, let us consider how to provoke one another to love and good deeds.
और दूसरे शब्दों के अंदर कि हम कैसे एक दूसरे को उसकाए कि हम एक दूसरे को प्रेम कर सके.
So as we are running our own race on one side,
और जैसे हम अपनी दौड़ को दौड़ रहे हैं एक दूसरे एक साइड पर,
we should also seek to encourage others by all means.
और हर एक रीति से हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने जीवन से औरों को भी प्रोत्साहित करें.
That is by love, genuine love and good deeds.
और एक खरे प्रेम के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा,
we can encourage our dear ones.
और हमारे जो प्रिय लोग हैं उनको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं.
Who are running this race.
जो इस दौड़ को दौड़ रहे हैं.
In this world there are enough problems and pressures from all sides.
और यहाँ पे इस संसार में बहुत सारे दबाव और तकलीफें हर 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 स्तर पे है.
For example, if we send our children to school, there are people there, friends and teachers, who discourage them or underestimate them.
और जैसे बच्चों को अगर स्कूल में जाते हैं वहाँ पे टीचर्स और लोग हैं जो उनको निराश करने वाले.
But in the school and the church, we should be encouraging them.
और हर जगह पर हम उनको प्रोत्साहन देने वाले ठहरे.
They deserve our love and good deeds.
और वो हमारे भले प्रेम और कामों के वो हकदार वो है.
So as we are running our own race, let us also seek to encourage others.
और जैसे हम अपनी दौड़ को दौड़ते उसके साथ साथ औरों को भी हम प्रोत्साहित करते चले.
The youth meeting was a real blessing for me.
और youth meeting जो थी मेरे लिए आशीष का कारण थी.
Especially the group discussion the brothers had.
और जो group discussion जो भाइयों में था वो बहुत ही अच्छा था.
Because I could see so much of time being wasted by me.
और मैं देख पाया कि मेरे द्वारा बहुत समय मैं व्यर्थ करता हूँ.
So that was really coming to me while last 2 days whenever. I get some time how I can use it profitably, that was coming to my thoughts all the time.
Aur 2 din se ye vichar mere man mein nirantar aa raha tha ki jab bhi mujhe ek samay khali milta hai kaise main uska istemal karta hu.
So that is what a real encouragement to me.
Aur ye mere liye protsahan ka karan tha.
And in the verse we read today in Hebrews 12,
Ibraniyon 12 mein jo vachan humne aaj padha,
we read in verse 3,
teen vachan mein jo hum dekhte hain,
for consider him who endured such hostility by sinners against himself, so that you do not grow weary and lose heart.
इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो.
So this is a good thing to it is written here that whenever we face any situation where there is opposition or something which is troubling us, it is look to Jesus.
और जब कभी हमारे जीवन में ऐसी कोई विरोध की बात या कोई ऐसी चीज़ जो हमें तकलीफ दे रही है, ऐसे समय में हम यीशु की ओर देखें.
So when we look at Jesus, we will not lose heart.
और जब हम यीशु की ओर देखेंगे, तब हम अपने निर्दय में निराश नहीं होंगे.
So that is what is an encouragement to us that if in all situation I can look at Jesus.
और ये मेरे लिए प्रोत्साहन है कि हर परिस्थिति में मैं यीशु की ओर देख सकता हूँ.
That I will not lose heart.
और ताकि मैं निराश नहीं होऊंगा.
That is what I want to keep doing all the time.
और मैं हर समय ये करना चाहता हूँ.
Not focusing attention just on myself.
और मेरे अपने ऊपर ध्यान न रखते हुए.
Looking at Jesus.
यीशु की ओर मैं देखूँ.
Then I will not lose heart.
और ताकि मैं निराश न हूँ.
Thank the Lord for the words God spoke to us.
प्रभु का धन्यवाद जो वचन से उनसे बातें की.
As we heard today, there are many incumbrances, like many things that obstacles that that we face while walking in this way.
और जैसे हमने सुना कि उस मार्ग में जब हम चलते हैं, उस दौड़ में बहुत सारी ऐसी रोकने वाली या ध्यान भंग करने वाली चीजें होती हैं.
One of the big ways in which that one of the big obstacles that we have in our lives is this. Accusation that the devil accuses us sometimes.
और सबसे बड़ा जो रोकने वाली है हमको हमारे ध्यान को भंग करने वाली कि शैतान जो हम हमारे हमें जो दोषी ठहराता है.
In the book of Revelation 12.
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय.
In the 10th verse.
10 वचन.
Says here, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Christ have come, for the accuser of the of our brethren has been thrown down, he who accuses them before God. Day and night.
अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है.
And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony.
मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए.
So how do I fight this devil who accuses me?
और ये जो दोष लगाने वाला शैतान है उसको कैसे मैं लड़ सकता हूँ?
It is by telling him that the blood of Jesus has cleansed me.
और उससे कहते हुए कि यीशु के लहू ने मुझे शुद्ध किया है.
And then declaring the word of God that is said very clearly that my if you read in Romans.
अगर हम रोमियो में पढ़ते हैं.
Romans 8.
रोमियो 8 अध्याय.
From 33 onwards.
33 से आगे.
Says who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies.
और परमेश्वर के चिन्हों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है.
Who is the one who condemns?
फिर उनको कौन दंड की आज्ञा देगा?
Christ Jesus is he who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who is also intercedes for us.
और मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है.
So I can, this is the word that I should tell the devil when he condemns me or accuses me.
और यही वचन मुझे कहना है जब शैतान से मुझे कहना है जब वो मुझे दोषी ठहराता है.
Christ Jesus has died for me.
यीशु मसीह मेरे लिए मरा है.
And he is interceding for me.
और वो मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है.
Always that word should be there in my heart because when we fall many times the devil is there to make us fall again fall more down by giving us condemnation and discouragement.
और जब कभी हम गिरते हैं तब शैतान और भी हमको गिराने के लिए निराशा देने के लिए रहता है तब ये वचन हमारे हृदय में होना जरूरी है.
Even if I fall today this moment I can ask God to forgive me and cleanse me and I can run this race again.
और अगर आज इस समय भी अगर मैं गिर जाता हूँ फिर भी मैं प्रभु से माफी मांगकर उसके लहू से उस दौड़ को दौड़ने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ.
I can be justified and God looks at me as he looks at Jesus.
और मैं धर्मी ठहराया जा सकता हूँ. वो परमेश्वर मुझे यीशु को जैसे देखता है वैसे देखता है.
There is no obstacle. It's clear. I can see at Jesus and I can look at Jesus. There is absolutely I can be absolutely at clear conscience.
और अभी मेरा विवेक जो है बहुत ही शुद्ध है. अभी कोई भी ऐसी उलझाने वाली या भंग करने वाली चीजें नहीं है.
But that should be a constant thing because the devil is his job is to continuously accuse us.
और ये निरंतर हमारे जीवन में होना चाहिए क्योंकि निरंतर शैतान हमें दोष लगाता है.
There can be, if it is not the devil, it can be some person who can accuse or condemn us.
और अगर शैतान नहीं लेकिन अगर कोई और भाई बहन होगा जो हमको दोषी ठहराता होगा.
I don't have to tell that person, but in my heart I can reject it.
और मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं लेकिन मेरे हृदय में उसको इनकार करना है.
Because the Lord will never condemn me or accuse me.
और परमेश्वर कभी भी मुझे दोषी नहीं ठहराएगा.
He will only encourage me to get up again and run this race again.
और मुझे हमेशा प्रोत्साहन देगा कि खड़े हो जाओ और इस दौड़ को फिर से दौड़.
Whenever I hear a man of God who is walked this way and has gone many much ahead in the in Christian life.
और जब कभी मैं ऐसे प्रभु के जन के बारे में सोचता हूँ जो बहुत प्रभु यीशु में बहुत आगे बढ़े हुए हैं.
That is not to discourage me.
और ये मेरे लिए एक निराशा की बात नहीं है.
To encourage me that I can also run this race with the same power that he has.
और ये प्रोत्साहन की बात है कि उसी सामर्थ्य के साथ मैं वैसे ही दौड़ को दौड़ सकता हूँ.
The same grace that he had, I can also run this race.
और जो अनुग्रह उसके पास है उसी अनुग्रह के द्वारा मैं इस दौड़ को दौड़ सकता हूँ.
Jesus was tempted in all points. He became like me.
और वो हर एक परीक्षण यीशु मसीह का हुआ वो मेरे जैसा हुआ बना.
He had the same temptation to get condemned and accusation and all. He had the temptation, but he never fell.
और मेरे ही समान यीशु मसीह के ऊपर भी वही परीक्षण था कि वो दोषी वो अपने आप को ठहराए या दंड दे वो लेकिन उसने नहीं किया.
But he overcame with the same Holy Spirit that he gives us.
वो पवित्र आत्मा जो उसने हमें दे उसी के द्वारा वो भी विजय प्राप्त किया.
So God doesn't want me to fall in even once in the accusation or condemnation.
और परमेश्वर नहीं चाहता मैं कभी भी उस दंड की भावना या दोष की भावना के अंदर में कभी गिरूं.
Always having the joy of the Lord in my heart, even if when I fail, I get up.
और कभी भी अगर मैं गिरता हूं तुरंत खड़े होकर दौड़ू और परमेश्वर वो पवित्र आत्मा का आनंद मेरे हृदय में हमेशा हो.
This is one area where many times we fall.
ये एक क्षेत्र है जहां हमेशा हम गिरते हैं.
God doesn't want me to sulk in my sin for one moment.
और कभी भी ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता कि उस पाप के अंदर मैं डूबा रहूं उसी के अंदर मैं ग्रसित रहूं.
I need to get up and run again.
वो चाहता है कि मैं उठूं और खड़ा होकर वापस उस दौड़ को दौड़ूं.
Because the blood of Jesus is there to cleanse me immediately.
और तुरंत ही यीशु मसीह का लहू मेरे लिए उपलब्ध है मुझे शुद्ध करने के लिए.
And then I can have a clear channel where God can speak to me.
और फिर उसके बाद एक क्लियर चैनल मेरा ही परमेश्वर के साथ जिससे भी वो मुझसे बात कर सके.
And the good news is,
और अच्छी खबर ये है,
Revelation chapter 12,
प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय,
verse 12,
12 वचन,
therefore rejoice,
इसलिए आनंदित हो,
O heavens and you who dwell in them, O to the inhabitants of the earth and the sea, for the devil has come down to you, having great wrath. Because he knows that he has short time.
इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है.
So he has a very short time.
और शैतान का जो समय बहुत ही कम है उसका.
So stay the course.
इसलिए हम बने रहे.
We will pass through temptations.
हम उस परीक्षण से हम गुजरेंगे.
We will pass through tests and situations.
उन परीक्षाओं से परिस्थितियों से हम गुजरेंगे.
It looks like a difficult times in these generations.
ये समय में हमें ये पीढ़ी में लगता होगा कि बहुत कठिन समय है.
But stay the course.
लेकिन हम बने रहें.
John 9,
यूहन्ना 9 अध्याय
31,
31 वचन.
I have been reading all these words for last couple of years.
और ये वचनों को मैं कई सालों से पढ़ते आया हूँ.
I want to share this also with you.
और मैं आपसे बांटना चाहता हूँ.
It's always my belief.
और ये मेरा विश्वास है.
That people who look spiritual.
और जो हम आत्मिक दिखते हैं.
People who pretend to know the word.
और जो वचन का जानने का दिखावा करते हैं.
And technically they may know the word too.
और technically शायद वो वचन को जानते भी होंगे.
But they may not be with God.
लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ नहीं होंगे.
But I always respected and revered for those people.
लेकिन मैंने उनका आदर किया है जो वचन में जो बढ़ते हैं.
And I believed.
और मैंने उन पर विश्वास किया.
When they pray for me.
और जब वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं.
That God will answer them.
या तब परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा.
And the same was applicable to me also.
और यही वचन मेरे लिए लागू होता है.
And many times when I was praying.
और जब बहुत बार मैं प्रार्थना करता था.
My prayers were not answered.
मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता था.
And I came across these words.
और फिर इस वचन के पास में आया.
John 9:31 says, "Now we know that God does not hear sinners."
हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता.
But if anyone is a worshipper of God and does His will, He hears them.
परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है.
Yeah, so we need to stay the course.
और हमें उसमें उस भाग में बने रहना है.
For us to God to hear our prayer.
जिससे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने उत्तर दे.
And for us to overcome.
ताकि हम विजय प्राप्त करें.
All our difficulties.
और हमारे हर एक तकलीफों के अंदर.
All our temptations.
हर एक परीक्षणों के अंदर.
All our situations.
हर परिस्थितियों के अंदर.
And all our accusations.
और हर एक दोष के अंदर.
I'm blessed by the word of God.
और मैं प्रभु के वचन से आशीषित हुआ.
In 68 there was an Olympian from Tanzania, John Stephen Akiwari.
और जॉन स्टीफन करके 68 के साल के अंदर एक ओलंपिक में खिलाड़ी थे.
So there was this Olympics in Mexico and he participated in the marathon race.
और मेक्सिको में ये ओलंपिक था और उन्होंने मैराथन के अंदर भाग लिया.
So every marathon race is 42 kilometers, you all know.
और मैराथन किलोमीटर जो 42 किलोमीटर का होता है.
That's around 2-2.5 hours run.
और दो से दो ढाई घंटे में होता है वो.
And as he was running in 17 kilometers or 14 or 17, I don't remember.
और 14 या 17 किलोमीटर जब उन्होंने भाग लिया.
He had a mishap. I think he slipped or I think someone pushed him and he fell on the pavement.
और वहाँ पर अगर पता नहीं क्या हुआ, वो गिर गया या किसी ने धक्का मारा और वहाँ वो अपने रास्ते से साइड में गिर गया.
And he wounded his arm, right arm and right leg.
और उनका जो दाहिना जो हाथ और पैर जो है उसमें उसको चोट लगी.
And he couldn't run the way he wanted to.
और जिस वगैरह वो भागना चाहते थे वो नहीं भाग पाए.
But he limped all the way to the finish line from 17 to 42 kilometers.
Aur 17 kilometers se 42 kilometers langdate langdate wahan tak wo pahunche.
That's 25 kilometers he limped and he ran.
Aur 25 kilometers tak isi tarah se langdate hue wahan tak pahunche.
He came last.
Aur wo sabse antim aaye.
And there was a huge gap between, you know, the runners and this guy. It was almost a 1 hour gap. He finished at 3 minutes 20 seconds. I mean, sorry, 3 hours 20 seconds. The others finished in 2 hours 25.
और जो आगे जो दौड़ने वाले थे और ये भाई के अंदर बहुत ही अंतर था. और उन्हें 2 घंटे में और इस भाई को 3 घंटे और कुछ सेकंड लगे.
And there's a prize medal ceremony going on and because they thought that this guy had already, you know, was disqualified.
और वहाँ पे prize ceremony चल रहा था और लोगों को लगा कि ये योग्यता इसने प्राप्त नहीं किया.
And suddenly the crowd rose and started clapping.
और बहुत लोग खड़े वहाँ पर हो गए तालियां बजाने लगे.
So all the media and all the people shifted their eyes to finish line and this John finish the race.
Aur jahan pe sare media sare log the apni aankhon ko is bhai ki aur lagaya jo us finish race line ki
taraf. The crowd stood up and clapped and all that.
Aur sare logon ne taali bajayi.
In the interview, this line what he said, you know, touched me. In his interview.
Aur uske interview mein usne ek line kaha jo mujhe chhua.
He said that my country did not send me 5000 miles just to start the race.
और मेरे जो देश ने मुझे इसलिए नहीं भेजा इतने हजारों मीलों की दूरी के कि मैं केवल इसकी शुरुआत करूं.
They send me to finish the race.
उन्होंने इसलिए भेजा ताकि मैं उस दौड़ को पूरा करूं.
That really touched me and I was just wondering, you know, I'm not here on this earth, born in a Christian family, just to start the race.
और ये मुझे बहुत ही स्पर्श किया उस कथन ने कि मैं इसलिए नहीं कि एक परिवार के अंदर मसीह बनकर मैं उस दौड़ को केवल शुरुआत करूं.
Starting the race is me born in a Christian family.
और उस दौड़ को शुरू करना इसका मतलब कि उस मसीह परिवार के अंदर जन्म लेना.
और when Christ you know accepts you and you take water baptism, that is the start of the race.
और जब आप मसीह को प्राप्त करते उद्धारकर्ता के रूप में आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं.
But that's not my marathon run. My marathon is when I finish the race and endure to the end.
और मेरा मैराथन इतना ही नहीं लेकिन उस मैराथन उस दौड़ को पूरा करना अंत तक जाना है.
And I'm seeing that God wants people who you know run and finish the race, not start the race.
और परमेश्वर चाहता है ऐसे कि हम उस दौड़ को पूरा करें, केवल शुरुआत करके वहीं पर खड़े रहे.
We see Paul, a great example. He says, "I finished the race. He's not, I've started the race."
और पौलुस का हम उदाहरण देखते हैं कि वो कहता है कि मैंने केवल शुरुआत नहीं लेकिन उसको अंत भी किया है.
In his, as brother Abu shared in 2 Timothy.
और दूसरे तीमती में जैसे हमने अभी सुना.
At the end of his life.
उसके जीवन के अंत भाग में.
2 Timothy.
दूसरा तीमती.
4:7-6 says that you know I've been poured out as a drink offering and the time of my departure has come. That means that is end of his life.
वो उसके जीवन के अंत भाग में सब कुछ कह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ.
Paul says, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith.
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है.
So he has gone through a lot of tribulations, lot of circumstances, weightage.
बहुत सारी परिस्थितियों से संकट से पौलुस गुजरा है.
But he's endured, he's finished the course.
लेकिन उसने उस भाग को उस दौड़ को पूरा किया.
And in the next verse says there's a future, there's a crown waiting for me in heaven.
और आगे के वचन में लिखा है कि एक मुकुट एक प्रतिफल उसके आगे लिए वो राह देख रहा है.
Do you think that Christians are simply running? Christians are simply running the race, simply enduring the race?
क्या
no.
क्या हम ऐसा सोचते हैं कि जो मसीह लोग हैं वो ऐसे ही दौड़ दौड़ रहे हैं?
But I've not, you know, I didn't know till sometime that you know there's a crown waiting for me. There's God has prepared something for me there.
और मुझे ये तब तक नहीं पता क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक मुकुट को एक प्रतिफल को मेरे लिए तैयार किया हुआ है.
When Jesus ran his race on earth, he came down to save all of us, save sinners. That's what he came down.
और जब यीशु ने अपनी दौड़ को दौड़ा उस धरती पर आया ताकि हम सारे पापियों को बचा सके.
When he finished the course, he says in Hebrews 12.
इब्रानियों 12 के अंदर वो कहता है.
When he finished the course. Jesus in the last part of verse 2 he sat down at the right hand on the throne of God. That was his prize.
और वो जब इस दौड़ को पूरा यहाँ पे लिखा है दूसरे वचन के अंतिम भाग में कि वो पिता के दाहिने भाग में जाकर बैठा वो उसका प्रतिफल था.
So fixing our eyes on Jesus, that's what Paul says, fixing our eyes on Jesus because he ran, he endured, he you know went through a lot of temptations, lot of hatred from all his people.
और अपनी आंखें पौलुस जैसे कहता है यीशु की ओर लगाना क्योंकि यीशु ने उस दौड़ को शुरुआत किया बहुत सारी चीजों से वो गुजरा और बहुत सारे लोगों की नफरत को उसने सहा.
And he says he endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God.
और वहां लिखा है क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा.
So brothers and sisters, it's an encouragement that at the end of the race there's something waiting for us.
और ये हमारे लिए प्रोत्साहन है अंत के दिन में कि हमारे लिए कुछ ना कुछ प्रतिफल मुकुट रखा गया है.
It's not just something we do on earth, you know, just preach and you know share about God's word and you know just try to finish a race and when we die we go to heaven. Yes, but there's also something, there's a prize waiting for us.
और इतना नहीं कि प्रभु के लिए हम कोई सेवकाई करते उसके वचन को बताते यहाँ पे पृथ्वी पर मरने के बाद स्वर्ग है वो तो है लेकिन उसके बाद हमारे लिए एक मुकुट एक प्रतिफल हमारे लिए रखा गया है.
And Jesus also says that the one who endures will be saved in Matthew 10.
मत्ती 10 में लिखा है कि जो अंत तक धैर्य धरेगा.
Matthew 10 verse 22.
मत्ती 10 उसका 22.
Matthew 10 22. And you will be hated by all on account of my name, but is the one who has endured to the end will be safe.
और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा.
So Jesus has done, he's endured to the end and he's asking us to endure and we'll be saved.
aur yeshu khud us daud mein daud ke ant tak dheeraj se sahata raha, aur humse bhi wohi apeksha karta hai ki hum bhi us daud mein dheeraj se chale.
So I'm really blessed by this verse, I mean this today's topic.
aur jo aaj ka jo shirshak jo hai, jo vishay, usse main bahut aashishit hua.
and I don't want to just you know start and leave halfway, I want to finish the race.
aur main us daud ko shuruaat karke beech mein hi chhodna nahi chahta, lekin usko ant tak pura karna chahta hu.
thank god for what I heard.
प्रभु का धन्यवाद जो बातें आज मैंने सुनी.
अबू वाज शेयरिंग फ्रॉम सेकंड टिमोथी चैप्टर 2.
दूसरा तिमोथी 2 अध्याय से हम सुन रहे थे
अबाउट अ सोल्जर,
सैनिक के बारे में.
सो वी रीड टिमोथी सेकंड टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 3 ऑनवर्ड्स.
दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 3 वचन से आगे.
एंड यह पॉल सेज सफर हार्डशिप विद मी एज अ गुड सोल्जर.
मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा.
And then he, you know, further explains about the life of a soldier.
और फिर वो एक योद्धा, एक जो सैनिक होते हैं, उसके जीवन के बारे में बताता है.
He says a soldier is no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life.
और वहाँ वो कहता है कि वो योद्धा लड़ाई पर जाता है, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न न करे, संसार के कामों में अपने आप को नहीं फंसाता.
And it says later on, so that he may please the one who enlisted him as a soldier.
ताकि जो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न कर सके.
So saying that the soldier, he is really more focused on his life as a soldier, protecting things or doing things what is told.
और जो सैनिक होता है, वो अपने जीवन में उसके लक्ष्य की ओर जो उसको कहा गया, उसको करने के लिए बहुत ही वो ध्यान देता है.
He has a life, but you know, he is more interested in doing the his own duties.
उसकी अपनी भी खुद का जीवन है, लेकिन उसकी जो जिम्मेदारी है उसको करने के लिए वो ध्यान लगाता है.
You see, like we see Indian soldiers also in the army and all that. You will see the going trucks and around here and there, the borders and all that. They have their own families, but first priority goes to the country.
और हम इंडियन आर्मी में देखते हैं कि लोग कैसे सीमाओं के ऊपर काम करते हैं. उनको भी अपना परिवार है, लेकिन फिर भी उनकी प्राथमिकता, उनके उद्देश्य वहाँ देखते हैं.
You will see they hardly they get 1 month to come back home, but 11 months they are in the border and doing some other work.
और साल में एक महीना ही उनको घर में आने को मिलता है, लेकिन बाकी के समय वो सीमाओं के ऊपर वो खड़े रहते हैं.
So and you know, Paul is telling us to know be as a soldier.
पौलुस हमें कहता है कि उस सैनिक, उस योद्धा के समान हमको बनना है.
So I was thinking, you know, like when I say, you know, I want to really be a soldier, how much more I'm entangled in worldly affairs.
और अगर मैं कहूँ कि मुझे यीशु का वो सैनिक बनना है, तो कितना मुझे उस संसार की बातों से बचे रहना है, अपने आप को नहीं फंसाना है.
एंड सेकंड थिंग आल्सो सेड अबाउट एन एथलीट.
और दौड़वीर के बारे में हमने देखा.
आल्सो इफ एनीवन कम्पीट्स एज एन एथलीट, ही डज नॉट विन द प्राइज अनलेस ही कम्पीट्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स.
और अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता.
सो यू नो देयर आर टू थिंग्स, नॉट एंटैंगल योरसेल्फ इन योर everyday life, and second thing is running according to the rules.
दो चीजें हैं. पहली कि हमें संसार के कामों में नहीं फंसाना है, और दूसरी जो लड़ने की जो विधि है, दौड़ने की, उस विधि, उस नियमों के अनुसार हमें दौड़ना है.
No, sir. Writers were asking, you know, like does all Christians they really run without any focus and all that? You know, does that happen? Everybody runs for a crown, but I can say, as I have seen my life, sometimes I run, you know, just for the sake of it. There's no focus, there's no goal.
और जैसे हमने अभी सुना कि जैसे कई मसीह विश्वासी होते हैं, वो दौड़ते किस लिए दौड़ते हैं, उनको कोई उद्देश्य नहीं, कुछ भी नहीं. कई बार अपने जीवन के बारे में भी सोचता हूँ कि मैं भी कई बार ऐसे ही दौड़ता हूँ किसी उद्देश्य के बिना.
You know, I wouldn't compare anybody or all that, but I'll compare my life for it.
मैं किसी और को के साथ तुलना नहीं, लेकिन अपने जीवन में तो बात कर रहा हूँ.
So really sit and really sit in my quiet place and ask God for help. He'll show me, you know, exactly, you know, what my life is and how I'm running.
और एक एकांत समय में बैठ के परमेश्वर से मैं बात करूं कि प्रभु तू मेरे जीवन को दिखा कि मुझे कैसे इस दौड़ को दौड़ना है.
सो यू नो ही विल शो एग्जैक्टली व्हाट माय थिंग इज, वेयर आई एम एंड व्हाट आई एम.
और वो सच में जानता है कि मैं कहां हूं और किस तरह से मेरा जीवन है.
यू सी दिस इन द ओलंपिक्स एंड ऑल दैट, दे हैव दिस हर्डल रेस, यू नो दिस हर्डल्स इन बिटवीन, एंड अ पर्सन इज रनिंग, यू नो, एंड ही हैज टू, व्हाइल रनिंग ही हैज टू जंप ऑन द हर्डल, क्रॉस, देन अगेन अ हर्डल, जंप, एंड ही हैज टू, यू नो, कंप्लीट दैट रेस.
और हम ओलंपिक के अंदर जैसे जानते हैं कि हर्डल रेस होता है, वहाँ पे एक लकड़ी ऐसा कुछ रखा होता है, उसको दौड़ को उसको उसके ऊपर कूद के और कूदते हुए उसको आगे जाना होता है.
सो यू नो व्हेन रनिंग, इफ वन हर्डल फॉल्स, ही डजंट स्टॉप देयर, ही सेज द हर्डल इज फॉल्ड, आई वोंट रन नाउ, But even if he says he wants to complete the race.
और अगर दौड़ते हो कूदते हो अगर वो हर्डल गिर जाता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता अरे गिर गया लेकिन फिर भी वो आगे की ओर दौड़ता जाता है और कूदते जाता है
सो आई हैव सीन माय लाइफ समटाइम वन रॉन्ग समथिंग हैपेंस यू नो समथिंग समबडी सेज अगेंस्ट मी बट दैट वन हर्डल फॉल्स आई एम सिटिंग इन द राइट प्लेस आई वोंट वांट टू गो देयर आई वांट दैट गाय टू से सॉरी टू मी
और कई बार मेरे जीवन में भी होता है कि एक हर्डल अगर गिर गया वहां पे किसी ने मुझे कुछ बोल दिया निराश होकर मैं बैठ जब तक वो मुझे सॉरी नहीं बोलूंगा मैं आगे नहीं बढ़ पाता
So, you know, the thing is, you know, here it specifically says, you know, first is, I have to really first see my inner life, you know, how I am living, you know, my secret life, go to God and ask Him for grace, you know, to show me what it is and overcome all those things.
और मुझे सच में परमेश्वर के पास जाकर अनुग्रह मांगना है कि मेरा गुप्त जीवन, मेरा एकांत का जीवन मैं कैसे जी रहा हूँ.
As sir, we read Hebrews chapter 12.
इब्रानियों 12.
And then verse 1 onwards.
से आगे
देखो सिंस वी हैव सो ग्रेट अ क्लाउड ऑफ विटनेस सराउंडिंग अस लेट अस आल्सो ले असाइड एवरी इनकंबरेंस एंड द सिन व्हिच सो इजीली एंटैंगल्स अस एंड लेट अस रन विद एंड्यूरेंस द रेस दैट इज सेट बिफोर अस
इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है आओ हर एक रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े
So many witnesses around. You know, sometimes we feel like nobody is watching, but you know, first and foremost, God is watching us.
और हम
second is Satan also watching us. How we are living, you know.
इस वचन में लिखा है कि गवाहों का ऐसा बहुत सारे गवाह है जो हमको देख रहे हैं. सबसे पहले परमेश्वर जो हमें देख रहा है और उसके साथ साथ शैतान भी हमको देख रहा है कि हम कैसे जी रहे हैं.
And it says about you know laying about every incumbrance and also the sin, and it's given sin that easily entangles. It's not just but easily entangled us
aur yahan pe likha hai rokne wali vastu aur uljhane wale paap aise paap jo bahut hi jaldi hame pakad lete hain
and then it says you know run this race with endurance
aur fir wo kehta hai dheeraj se is daud ko daudo
and the most important part is fixing our eyes on Jesus not upon anybody but fixing our eyes on Jesus the author and perfecter of faith
aur mukhya baat wo kehta hai apni aankhon ko vishwas ke karta siddh karne wale yeshu ki aur lagana hai
and saying why see Jesus And why he is the author and perfecter? Because he endured himself on the cross. Just this, not just said because you know, just look unto Jesus, but look unto Jesus because he has finished this race. He has endured everything, and he, you know, like sometimes he can idle some a person like, but he's saying you take Christ as your example, you know, that you can really endure like him.
और हमें यीशु की ओर क्यों देखना है? क्यों? क्योंकि वो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला. उसने उस धीरज को, उस दौड़ को धीरज से दौड़ा है. उसकी ओर हमें देखना है.
And it says about then if you read, I was reading the same part in Revelations.
और प्रकाशित वाक्य में इसी भाग को पढ़ रहा था.
Sharing in the youth meeting about it.
और youth meeting में इसके साथ इसके बारे में मैंने बताया था.
Chapter 3
teen adhyay
if you read verse 21
21 vachan
says he who overcomes I will grant to him to sit down with me on my throne as I also overcame and sat with my father on his throne
jo jay paaye main use apne sath apne sinhasan par baithaunga jaise main bhi jay paakar apne pita ke sath uske sinhasan par baith gaya
Thing is, you know, Jesus says, "I help you, you know, and even if you overcome all these things, you will come and sit beside me."
और यीशु मसीह कहता है कि जो जय पाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और वो अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा.
So, such a God has given us the Holy Spirit and you know Christ as an example to live his life.
और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया और यीशु मसीह एक उदाहरण के रूप में दिया है.
So it is unto us, you know, that we take that first step, you know, like. First is if I can see my life is something wrong, but I go to God and He shows me. First, my part is to repent.
और पहला कदम जो मेरी ओर से है कि अगर परमेश्वर कुछ ऐसी चीज दिखाता है, उसके पास जाकर मुझे मन फिराना है.
And really ask God that God give me, you know, help me that I may really live as per Your will.
और प्रभु सच में मेरी मदद करे ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार जी सकूं.
As per Your plan for my life.
और जो
my plan.
मेरी योजना नहीं, लेकिन तेरी योजना के अनुसार मैं जी सकूं.
And I'll need the Holy Spirit to really help me and guide me
aur mujhe pavitra atma ki zarurat hai meri madad karne ke liye mujhe agwai karne ke liye
can really live like jesus and can really endure like jesus
taki main yeshu ke jaisa jee sakun uske jaisa main seh sakun
who is the author and perfecter of our faith
aur jo mere vishwas ka karta aur siddh karne wala hai